किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज की कहानी मेरे मित्र और कहानीकार कल्याण बनर्जी ने मेरे साथ साझा की थी, जिसको आज मैं आपको सुनाऊंगी। कहानी का नाम है स्टोन लोटस। वाचन है निधि बासु का। स्टोन लोटस का पौधा उत्तरी भारत में बहुत नहीं जाना जाता। दरअसल सच तो ये है कि ये गर्म वातावरण में बहुत मुश्किल से बचता है, इसे बहुत संभालना पड़ता है। इसके बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि गमले में लगा हुआ एक ऐसा ही छोटा सा स्टोन लोटस का पौधा हमारी कहानी का एक पात्र है। पहाड़ों और थोड़ी ठंडी जगहों पर ये झाड़ी के रूप में बहुत पनपता है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। स्टोन लोटस के जो पत्ते होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और इन पत्तों को यदि ऊपर से देखा जाए तो ये खिले हुए कमल की तरह लगते हैं। तभी ये पौधा स्टोन लोटस के नाम से जाना जाता है। इस कहानी के जो दूसरे अहम किरदार हैं उनका नाम है अनिमेश। तो चलिए अनिमेश से परिचय करते हैं। अनिमेश की ज्यादा उम्र नहीं हुई है, करीब 32-35 के भीतर है। दुबला पतला एकहरा शरीर और शांत स्वभाव। सरकारी नौकरी में लगभग 10 साल से कार्यरत। बहुत कम बोलते हैं और बहुत धीरे भी। इतना धीरे कि सुनने वाले को दोबारा बोलने के लिए कहना पड़ता है। ये प्रकृति प्रेमी है। पेड़ पौधे चिड़ियां इनके बारे में ये जानते भी बहुत कुछ हैं और इनके बारे में हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरी एक खासियत ये भी है कि ये अत्यधिक शर्मीले हैं। लड़कियों के सामने तो बोल ही नहीं पाते। तो ये सब मिलजुल कर जो इनका एक अनन्य अद्भुत चरित्र उभर कर आता है उसी पर ये कहानी आधारित है। अनिमेश की शादी को 3 साल हुए हैं। इनकी पत्नी है रत्ना। बेहद खूबसूरत, तीखे नैन नक्श और आकर्षक व्यक्तित्व वाली युवती। इन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर है और देखा जाए तो ये लोग एक जोड़े की तरह कम और दोस्तों की तरह घुल मिलकर अधिक रहते हैं। कुछ पति होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी बनाकर रहते हैं, विशेषकर पत्नी के सामने। अनिमेश ऐसा नहीं है, बिल्कुल सादा दोस्त की तरह है। लेकिन इन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है इसमें एक छोटी सी समस्या थी जिसे रत्ना ने सहन कर लिया और जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। दरअसल जब ये दोनों हम बिस्तर होते थे उन सुहावने अंतरंग पलों में, जब उन्हें ठंडी हवाएं चलती सी लगती, धीमा धीमा संगीत सुनाई देता, एक अलौकिक रोशनी चारों ओर फैली हुई लगती और जब उनकी धड़कने आसमान छूने लगती, अनिमेश एक अद्भुत काम करता। कभी कभी वो अपनी पत्नी की जीभ को छूता था। उसकी जीभ का स्पर्श करके एक अजीब सी अनुभूति होती थी अनिमेश के शरीर में, निषिद्ध पर उसके सर्वांग को रोमांच के भाव से भर देने वाली, उसके रोम रोम को पुलकित कर देने वाली। ये अभ्यास, जिसको हम अच्छा या खराब अभ्यास नहीं कह सकते, उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं था। पत्नी भी थोड़ी सुलझी हुई महिला हैं। उन्होंने किसी प्रकार अनिमेश की इस आदत से समझौता कर लिया। यद्यपि उनको ये बिल्कुल पसंद ना था कि एक पुरुष, चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो, बिस्तर पर अपनी 3 उंगलियों से उनकी जीभ को छुए। शुरू शुरू में उसके मन में घृणा उठी, पर धीरे धीरे उसने अपने पति के इस अभ्यास को स्वीकार कर लिया। तो ये हमने अनिमेश, अनिमेश की पत्नी और उसके इस विचित्र आचरण के बारे में सुना। इसी तरह इस युवा दंपत्ति का जीवन कट रहा था। एक बार यूं ही अनिमेश के हाथ उसकी पत्नी का मोबाइल आया। वैसे छानबीन का इरादा तो कोई ना था, पर उसने ये देख लिया कि हर रोज अधिकाधिक समय बिता के रत्ना एक विशेष नंबर पर बात करती है। अनिमेश ने कुछ नहीं पूछा, जानना भी नहीं चाहा, लेकिन धीरे धीरे प्रकट हो गया कि वो नंबर रत्ना के ऑफिस का है और जिस व्यक्ति के बराबर फोन आते हैं वे रत्ना के साथ ऑफिस में काम करते हैं। उसके बॉस हैं जिनके नीचे रत्ना काम करती है। इतनी लंबी लंबी बातें होना और ये बात छिपा जाना अनिमेश को कुछ अजीब लगा और उसके मन को एक गहरा धक्का लगा। फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई जो पत्नी से पूछे कि ये कौन है, क्योंकि ऑफिस के सारे लोग जाने पहचाने थे, उसको कुछ बातों का पता भी लग गया। अब हम चलते हैं इन दोनों की बालकनी की ओर। छोटी सी बालकनी है, तकरीबन 4x6 फीट की होगी। ये दोनों दो कमरे के फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। अनिमेश को अद्भुत तरह के पेड़ पौधे कलेक्ट करने की एक बीमारी सी है और तरह तरह के एक से एक अनोखे पौधे अपनी इस बालकनी पर उसने कलेक्ट किए हुए हैं। वही इनकी देखभाल भी करता है, उसकी पत्नी इन्हें नहीं देखती। इन्हीं पौधों के बीच में एक गमले में स्टोन लोटस को संभाला गया है। बहुत देखभाल की गई है शायद, तभी इतना सुंदर दिखता है। गमले में बिल्कुल भर गया है। ऐसा नहीं कि ये एक फूलदार पौधा है, पर स्टोन लोटस की निर्मल हरे रंग की पत्तियां इस तरह से खिलती हैं, जैसे कमल का फूल। चलिए वापस चलते हैं अनिमेश के जीवन में। रत्ना के बारे में मालूम होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके मन को एक कुंठा ग्रसित करती चली गई। एक दुविधापूर्ण प्रश्न उसकी चेतना में जमने लगा, कुछ ऐसे जैसे अंधकार डेरा डालता है एक ऐसे जंगल में जिसका कोई अंत नहीं। रत्ना के उन लगातार आने वाले फोन कॉल से अनिमेश की मनःस्थिति संशय से परिपूर्ण हो गई थी। हमेशा लगता कि कभी प्रश्न पूछे कि ये कौन है, क्यों इसके फोन इतनी बार आते हैं, क्यों तुम्हारी बातचीत इतनी लंबी होती है, पर फिर लगता कि पत्नी सुनाएगी कि आप मुझ पे विश्वास नहीं करते, मेरे फोन कॉल्स पर जासूसी करते हैं। तो इसी तरह के झगड़े से बचने के लिए उसने कुछ पूछा नहीं। परंतु जहां शरीर का कष्ट फिर भी सहन किया जा सकता है, वहीं मन का दुख झेल पाना प्रायः बहुत भारी पड़ता है। इस परिस्थिति से क्या हुआ कि पहले अनिमेश का मन टूटा, उसके बाद शरीर टूटने लग गया, यानी उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। बहुत दिन तक ऑफिस नहीं जाता, लंबी लंबी छुट्टियां हो जाती थी। यदि ऑफिस चला भी गया और मन उचट जाए तो एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाता था और निरंतर इसी बारे में सोचता रहता था कि ये फोन लगातार आता रहता है और रत्ना मुझे कुछ बताती क्यों नहीं। इस चिंता से उसका शरीर भी प्रभावित होना शुरू हो गया था, पर ऊपर से सब कुछ सामान्य चल रहा था। पत्नी के साथ व्यवहार, बोलचाल भी, यहां तक कि वैवाहिक जीवन भी, और रात को पत्नी की जीभ का स्पर्श करना भी। अपनी ये एक आदत अनिमेश कभी छोड़ नहीं पाया। तबीयत खराब लगने के कारण डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कोई रोग नहीं है, पर फिर भी वो बहुत पतला हो गया था और खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने खाने पीने के ढंग में बदलाव लाने को कहा, दवा भी दी, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर ऐसी स्थिति में एक और विडंबना आई। उसकी पत्नी एक दिन ऑफिस से वापस नहीं आई, बस फोन करके कह दिया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अनिमेश तब भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पूछे, क्यों नहीं आ पाओगी, क्या मुझसे कोई गलती हुई, चलो बैठकर बातचीत कर लेते हैं ना, परिवार क्यों नष्ट करें। वो कुछ भी ना कह पाया। इसे परिस्थिति से भागना भी कहा जा सकता है, पर तब तक अनिमेश इतना दुर्बल और रुग्ण हो चुका था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, या फिर शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने पर एक सकारात्मक काम करके गई। वो एक काम वाले बाई को अनिमेश की सेवा के लिए रख गई। लगभग 55-60 वर्ष की एक महिला मुखुदा अनिमेश को समझती। अनिमेश को सही समय पर खाना और दवाइयां देना, सही समय हाथ पकड़ के बाथरूम ले जाना, ये सब चलता रहा। अनिमेश यदि उसकी ओर देख के मुस्कुराए तो मुखुदा दीदी समझ जाती थी कि अनिमेश को सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। लेकिन अनिमेश में इतनी ताकत नहीं कि वो उठकर जाए और मेज के उस कोने से सिगरेट की डिब्बी लाए और माचिस जलाए। लेकिन तड़प है, पी रहे हैं। खाना पीना, दवा, सब कुछ मुखुदा के ऊपर निर्भर है। एक दिन मुखुदा एक डॉक्टर को लेकर आई और दोबारा अनिमेश को दिखाया गया। जांच पड़ताल हुई। डॉक्टर ने कहा कि इनका तो सब कुछ ठीक है, पर फिर भी खून में हीमोग्लोबिन और बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो लगातार कम होती जा रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इनका जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। चलिए एक बार फिर अनिमेश के फ्लैट और बालकनी की ओर नजर डालते हैं। इनकी बालकनी में अब एक भी पेड़ पौधा नहीं है। कौन खाद पानी डालेगा, कौन उनकी देखरेख करेगा? इसलिए मुखुदा ने एक एक करके सारे पौधे पड़ोसियों में बांट दिए। केवल एक गमले में पौधा है जो काट छांट के छोटा हो गया है, वो है स्टोन लोटस। अब वो बाहर बालकनी में नहीं रहता, अनिमेश के साथ उसकी साइड टेबल पर रहता है। और अनिमेश हर रोज एक काम करता है, आंखें बंद करके अपनी तीन उंगलियों से थोड़ा सा दबाव डालते हुए इसकी पत्तियों का स्पर्श करता है। ऐसा करते ही मानो उसके सर्वांग में एक सिहरन की अनुभूति होती है। लगता है जैसे रत्ना उसके साथ है और अपनी उंगलियों से उसकी जीभ का स्पर्श कर रहा है। वक्त यूं ही कटता रहा। अनिमेश और भी दुर्बल हो गया। अब वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है। और फिर एक दिन चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटे रहने वाला अनिमेश हमेशा के लिए सो गया। उसके न रहने पर मुखुदा ने उसकी पत्नी को फोन किया। मुखुदा के मन में रत्ना के प्रति गहरा आक्रोश था, सो गुस्से से तमतमाते हुए फोन किया। अधिक कुछ ना कहा, बस इतना कि तुरंत आइए, आपके पति का देहांत हो गया है, और फोन काट दिया। पर कुछ ही मिनटों के भीतर रत्ना ने पलटकर फोन करके बताया कि उसको आने में घंटा भर लग जाएगा, पर सारा इंतजाम कर दिया गया है। बॉडी लेने के लिए कुछ लोग आएंगे, हो सके तो उनको रवाना कर देना। इतने बीच मुखुदा बहुत असमंजस में थी कि आखिर अनिमेश की मृत्यु हुई कैसे। इतने डॉक्टर इसका चेकअप करते रहते थे, पर उनमें से कोई भी ठोस तौर पर कभी ना कह सका कि अनिमेश को बीमारी क्या थी। पता कैसे चले कि असल में इसको हुआ क्या था? जो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट के लिए आखिरी चेकअप करने आए थे, वे हार्ट फेल बताकर चले गए। पर इस बीच मुखुदा ने आखिरकार कारण ढूंढ ही लिया, वो भी इत्तेफाक से। स्टोन लोटस को अनिमेश नियमित रूप से उंगलियों से स्पर्श करता था, दबाता था। मुखुदा सोच में पड़ गई कि आखिर अनिमेश लगातार प्रतिदिन ऐसा क्यों करता रहता था। मुखुदा ने धीरे से स्टोन लोटस को छुआ, उंगली से दबाया, पर ऐसा करने पर मुखुदा ने जो पाया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। उसने महसूस किया जैसे उस स्टोन लोटस को छूने पर उसके पूरे शरीर में जैसे एक अद्भुत तरंग खिल गई। पहले हाथ से लेकर वो तरंग उसके सिर तक पहुंची, फिर पूरे शरीर में। उसके बाद थोड़ी थकावट सी महसूस हुई। मुखुदा ने तुरंत उन पत्तों से अपना हाथ हटा लिया और कुर्सी पर बैठ गई। उसने डॉक्टर को फोन करके जब ये सब बताया, डॉक्टर हंसने लगे, ये कहके कि कितनी अजीब बात करती हैं, ये पत्ते हैं, इनसे भला क्या होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती उस स्टोन लोटस की। पता नहीं क्यों मुखुदा के मन में दृढ़ विश्वास था कि यही जड़ है। वो फेंकने जा रही थी उस पौधे को, लेकिन उसने फेंका नहीं, क्योंकि जब तक घर में बॉडी है तब तक मृत व्यक्ति के प्रिय पौधे को कैसे फेंक सकते हैं। चले जाने के बाद फेंक देंगे। थोड़ी देर बाद रत्ना आई। रत्ना के साथ उसका ऑफिस वाला दोस्त भी आया, जो उसका बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड ने कहा कि रत्ना, मैं इस घर से कुछ भी नहीं ले जाऊंगा। हमारे नए फ्लैट में सारी नई चीजें हैं। इस फ्लैट से कोई भी स्मृति मैं वहां नहीं ले जाना चाहूंगा। रत्ना ने सहमति प्रकट की। कोई बात नहीं, ठीक कहा तुमने। मुखुदा को कुछ पैसा दिया गया। गॉगल्स के पीछे शायद थोड़े बहुत आंसू थे रत्ना की आंखों में। वो छिपाते हुए वहां से जाने लगी। तब तक कुछ लोग आए और अनिमेश को लेकर चले गए। पूरे घर में एक गहन शून्य का सा आभास हो रहा था। इतने में रत्ना के बॉयफ्रेंड ने देखा साइड टेबल पे विराजमान वो छोटा सा पौधा स्टोन लोटस का। उसके मुंह से निकला, वेरी फनी, ऐसा पौधा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे हरे पत्थर में तराशा हुआ एक कमल खिला हुआ है। कितना सुंदर फूल है ये। ये कहते हुए उसने उस पौधे को छुआ, और जो मुखुदा के शरीर में हुआ था वही इसके शरीर में होने लगा। उसने झटके से हाथ हटा लिया। फिर मुखुदा से पूछा कि कब से वो पौधा वहां पर रखा था। मुखुदा बोली, बहुत दिन से। मैंने सपने में देखा था कि इसको छूने से ना बहुत धन संपदा आती है, इसीलिए मैंने इसको यहां रखा कि साहब इसको छूते रहें और बहुत सारा पैसा आता रहे। पता नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैंने भी एक आध बार कोशिश की, पर मैंने जब इसको छुआ मेरे पास तो अचानक पैसा आ गया। ये सुनकर वो हंस पड़ा, बोला, ऐसा थोड़े ही होता है। फिर रत्ना को कहा, रत्ना, एक काम हो सकता है क्या? हम इस गमले को ले चलें क्या? रत्ना बोली, देखो यार, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, पर तुम कह रहे हो तो लिए चलते हैं। दरअसल रत्ना के बॉयफ्रेंड के मन में एक विचित्र अनुभूति हुई थी जब उसने स्टोन लोटस को छुआ था। उसके शरीर में एक तरह का स्पंदन बढ़ गया था। एक हल्का सा झटका उसके शरीर ने लिया और फिर एक सुखद आनंद की अनुभूति, और उस पौधे को बार बार छूने की इच्छा जगी। कुछ नहीं लिया, खाली घर पड़ा है। मुखुदा खड़ी है। अनिमेश की डेड बॉडी जा चुकी है, शायद अब तक जलना भी शुरू हो गई होगी। अनिमेश की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड अपने हाथ में स्टोन लोटस वाला गमला बहुत संभाल कर गाड़ी में पीछे बैठे। सामने ड्राइवर था। बातें करते दोनों जा रहे हैं। अनिमेश की पत्नी कह रही है, ये पौधा अगर ना लाते तो अच्छा होता ना, क्यों लेके चल रहे हो, फेंक दो इसे। नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है इसको छूके, तुम छूके देखो ना। नहीं, मैं नहीं छूना चाहती हूं। अनिमेश की पत्नी का बॉयफ्रेंड उसी स्टोन लोटस की पत्तियों का स्पर्श कर रहा है। शरीर में एक अद्भुत तरंग दौड़ रही है। वो आंख बंद करके आनंद ले रहा है, जैसे कि वो रत्ना की जीभ को स्पर्श कर रहा हो, और अनिमेश उसी गाड़ी में एक कोने में बैठा देख रहा है। ना, वो रत्ना को नहीं देख रहा है, वो उसके बॉयफ्रेंड को देख रहा है और मन ही मन कह रहा है, आओ जल्दी आओ ना। आप सुन रहे थे कल्याण बनर्जी द्वारा लिखी कहानी स्टोन लोटस। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।